हम कल ये देख रहे थे कि किस तरह से श्रीमती कुंती देवी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं और अब वह विषय बदल रही हैं। भगवान कृष्ण के सौंदर्य से अब वो चर्चा करने वाली हैं उन कष्टों के बारे में जिनको कि उनको अपने बच्चों के साथ सहन करना पड़ा और इन कष्टों के माध्यम से वो श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो आइए इस पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। श्रील प्रभुपाद द्वारा हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको पुत्रों समेत मुक्त किया है। अब कुंती महारानी पहली बार कष्टों का वर्णन कर रही है जो कि उनके उन्होंने और अन्यों ने भी सहा, सहन किया, परंतु जिन कष्टों में श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, जिन कष्टों से श्री कृष्ण ने उनको मुक्त किया। सबसे पहले वो देवकी को याद करती हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता। कंसेन, कंस जो कि देवकी के भाई थे, उन्होंने देवकी को क्या किया? रुद्धा, बंदी कर दिया, जेल में डाल दिया। अति चिरम, कितने समय तक? चिरम मतलब लंबे समय तक, अति चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। शुचार पिता, बहुत कष्ट में डाला इस प्रकार से। तो देवकी को कंस ने जेल में क्यों डाला, ये कथा तो आप सब जानते हैं कि जब विवाह होने जा रहा था देवकी का वसुदेव के साथ, तो अचानक एक आकाशवाणी आई, जबकि कंस ही अपने बहन को अपने पति के घर में ले जा रहे थे, और ये आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, तुम बड़े मूर्ख हो, इतने लाड़ प्यार से तुम्हारे बहन को तुम उसके पति के घर में ले जा रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बहन का 8वां पुत्र जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत कंस का मन बदल गया, कहां पहले का प्रेम और अब तुरंत इतनी द्वेष भावना से उसने अपने बहन के बाल पकड़ लिए, अपने तलवार को उठाया और उसकी हत्या करने ही वाला था कि उस समय वसुदेव ने किसी तरह से कंस को सांत्वना दी, तरह तरह से समझाने का प्रयत्न किया, तरह तरह के शास्त्रों के वचनों को दोहराया, लेकिन फिर भी जब ऐसे दिख रहा था कि कंस सुनने नहीं वाला था, तो अंततः वसुदेव को और कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से आज के खतरे को बचाने के लिए ऐसे भी कोई वचन दिया जा सकता है जिसके बारे में आगे देखा जा सकता है कि क्या होगा। तो तुरंत उन्होंने वचन दिया कि देखो कंस, अभी आकाशवाणी हुई है कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हें मारने वाला है, देवकी नहीं मारने वाली है। तो देवकी को मारने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी पुत्र मेरे होंगे मैं जन्म के बाद ही तुम्हारे हवाले उनको कर दूंगा, कोई चिंता नहीं करो। तो वसुदेव बहुत सत्य का पालन करने वाले आदमी हैं, ये कंस अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उस बात को उन्होंने स्वीकार कर दिया। और फिर जैसे ही बच्चे जन्म लेते गए एक के बाद एक, वसुदेव जाकर कंस को देता गया। जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो कंस के पास जब वसुदेव गए तो कंस को इतना प्रभाव पड़ा कि ऐसे मैंने आज तक जीवन में आदमी को नहीं देखा है जो इतना अपने वचन पर पक्का है कि अपने पुत्र को मृत्यु के लिए आकर मेरे लिए मेरे सामने रख रहा है। तो कंस का हृदय भी पिघल गया। उसने कहा कि ले जाओ, कोई बात नहीं, आठवां पुत्र मारने वाला है ना, ये तो पहला ही पुत्र है। लेकिन बाद में नारद मुनि आए, अरे कंस क्या मालूम, देखो ये 10 उंगलियां हैं, कौन सा पहला कौन सा आखिरी, पहला यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, तो आठवां पुत्र है पहले से आठवां या अंत से आठवां, कुछ कह नहीं सकते। नारायण नारायण। क्योंकि कंस नारद मुनि को चाहिए था कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन जल्दी से हो जाए और जल्दी से असुरों का वध हो जाए। तो फिर कंस का मन फिर से विचलित हो गया। जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका मन और उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती है, जैसा लोग कहते हैं वैसा बह जाते हैं। और विशेष करके उनकी इंद्रिय तृप्ति के कोई खतरा हो, उसके बारे में कोई कुछ उनको बताए तो उसके बारे में सतर्क रहते हैं। तो फिर कंस ने जाके उस बच्चे की हत्या की। उसके बाद और 5 बच्चे हुए जिनकी हत्या कंस करता गया। 6 बच्चों की हत्या ऐसे हो गई। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो उस समय वो गर्भ जो है वो संकर्षण थे, बलराम जी के अंश, और योग माया द्वारा वो गर्भ स्थानांतरित किया गया रोहिणी के गर्भ में, जो कि उस समय गोकुल में थी नंद महाराज के संरक्षण में। और ऐसे सभी ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया। 8वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो इस बार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लेकिन भगवान के आदेशानुसार वसुदेव ने कृष्ण को यमुना पार करके यशोदा मैया के पास गोकुल में रख दिया, और वहां जो उनकी पुत्री हुई थी उन पुत्री को यहां पर लेकर आए। वो पुत्री थी योगमाया। बच्चे के रोना सुनकर कंस वहां पर आया, बच्चे की को पकड़ लिया, हत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसकी मुट्ठी से निकलकर वो बच्ची ऊपर चली गई और ऊपर आसमान से कंस को डांटने लगी कि कंस तुम बड़े मूर्ख हो, अपने बहन की ओर इतने अत्याचार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हत्या करने वाला जो बच्चा है वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार से कंस ने अपने बहन को देवकी को बहुत कष्ट दिया, साथ साथ वसुदेव को भी। वैसे देवकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, आखिर वो भगवान की मां है, भगवान की मां होना कोई साधारण बात नहीं है। तो भगवान किसी साधारण स्त्री को अपना मां का पद नहीं देंगे। अवश्य जो बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, जो बहुत ही विशेष भक्त हैं, उन्हीं को भगवान चुनेंगे। देवकी और वसुदेव पहले सुतपा और वृष्णि थे, वृष्णि। उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे तो भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र कौन हो सकता है, मुझे ही आना होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र में भगवान को असमूर्ध्व शब्द से संबोधित किया जाता है, जिसका मतलब है असम। सम मतलब समान, असम मतलब उनके समान कोई नहीं है, और ऊर्ध्व मतलब उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान वो व्यक्ति हैं जिनके कोई समान भी नहीं है, कोई उनसे श्रेष्ठ भी नहीं है। तो जब सुतपा और प्रश्नी ने यह चाहा कि आप जैसा पुत्र हमारे पास हो, तो फिर भगवान ने सोचा मेरे समान, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी पुत्र, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो मैं ये वरदान कैसे पूरे कर सकता हूं, फिर मुझे ही आना होगा। तो भगवान फिर उनके पुत्र के रूप में आए, लेकिन ज्यादा समय उनके साथ में नहीं रहे, क्योंकि उनको आगे जाके वृंदावन में लीला करनी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जाके कई लीलाएं की। तो अब कुंती महारानी याद कर रही हैं कि कैसे देवकी माता को इतना कष्ट हुआ होगा, और कृष्ण को याद कर रही हैं, ऋषिकेश शब्द से संबोधित कर रही हैं। ऋषिकेश मतलब ऋषिकों के ईश्वर, ऋषि का मतलब इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के स्वामी, हमारे इंद्रियों के नियंत्रणकर्ता भगवान कृष्ण हैं। यही ऋषिकेश शब्द की परिभाषा है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। अभी देखिए, हमारा हाथ है, अगर हम सोचेंगे कि ये मेरा हाथ है और इसलिए इस हाथ को मैं मेरी सेवा में लगाऊंगा, मेरे संतुष्टि के लिए उपयोग करूंगा, तो अगर किसी भी क्षण में भगवान ने इस शक्ति को, इस हाथ की शक्ति को निकाल दिया, इस हाथ को पैरालाइज कर दिया, तो फिर क्या होगा, इस हाथ का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं सोच रहा हूं कि ये हाथ मेरा है, लेकिन ये हाथ मेरे नियंत्रण में नहीं है, किसी भी क्षण में इस हाथ से शक्ति भगवान निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि मेरे हाथ के नियंत्रणकर्ता मैं नहीं हूं, भगवान है। जब भगवान इस हाथ के नियंत्रणकर्ता है, तो इस हाथ की सेवा भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे लिए नहीं। तो यह है बुद्धि। जब व्यक्ति इसी प्रकार से सोचता है और भगवान की सेवा में अपने सारे इंद्रियों को लगाता है, तो इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब हमारे सारे इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेन, हमारे इंद्रियों को जब हम ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं, भक्तिरुच्यते, इसको भक्ति कहते हैं। फिर हमारे सारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। दुनिया में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस सरल सत्य को नहीं जानते, स्वीकारते नहीं हैं कि ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। केवल इस इंद्रियों को हमारे संतुष्टि के लिए उपयोग करना, यह दुख का कारण है। और अगर कोई व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, तो इन्हीं इंद्रियों को वो भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करेगा। यही सुखी बनने का रहस्य है, बहुत सरल बात है। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, ईर्ष्या करते हैं अन्यों से, कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, शरीर मन बुद्धि धन इत्यादि जो मेरे पास है, वो केवल मेरे भोग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए उनको बार बार दंड मिलता है। तो यहां पर कुंती महारानी खलेन शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता, कि कंस ने देवकी को बहुत कष्ट दिया, लंबे समय जेल में डाला, और कंस को खल कहती हैं। खल, खल मतलब बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है, द्वेषी व्यक्ति जो बहुत दूसरों से जलता है, ये इस सारे संसार की बड़ी बीमारी है। हर एक व्यक्ति यह अपन दूसरों के सफलता से, दूसरों के सुख से, उनकी प्रगति से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और अंततः यहां दुनिया के लोग भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण ही क्यों भगवान, मैं भी भगवान हूं। कृष्ण ही क्यों रासलीला करेंगे, मैं भी करूंगा। कृष्ण क्यों ही क्यों भोगता है, मैं भी भोगता हूं। तो अंततः जो भोग वृत्ति है, ये भगवान के प्रति ईर्ष्या का एक लक्षण है। और भगवान के प्रति जब ईर्ष्या करते हैं तो स्वाभाविक है कि संसार के लोगों के प्रति हम ईर्ष्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर किसी को जानना है कि वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य है कि नहीं है, तो ये एक परीक्षा है कि उसको ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। अगर हृदय में हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कोई जलन हो रही है, कोई द्वेष ईर्ष्या हो रही है, तो फिर हमें जानना चाहिए कि हम भौतिक जगत के हैं। अगर हमारा हृदय इस जलन से मुक्त है तो हम जान सकते हैं कि हम यहां रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं और फिर भगवान के धाम में जाने की तैयारी में हैं। और जब ये प्राण को त्यागेंगे, इस शरीर को त्यागेंगे, तब सीधे भगवान के धाम में जाएंगे, शाश्वत जीवन बिताएंगे, भगवान के सानिध्य में सदैव रहेंगे। तो ये परीक्षा हमारी है। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आप भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हैं। बस अपने ही हृदय में परीक्षा करना है। जैसे अगर हम जब भोजन लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेट भर गया है। हमें खुद पता चलता है, बस अब बहुत खा लिया, अब और नहीं खाना है। उसी प्रकार से हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हैं या नहीं है, ये जाने के लिए एक सुंदर सरल परीक्षा है। हमारे हृदय में परीक्षा करनी चाहिए कि दूसरों के प्रति हमारे हृदय में जलन है या नहीं है, दूसरों से हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं कि नहीं करते हैं। सरल सी बात। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का मार्ग, ये भक्ति का पथ, गोलोक वृंदावन के लिए योग्यता क्या है? धर्म प्रोज्झित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनमूलनम। अन्य धर्मों को ये श्रीमद् भागवतम त्यागता है, कैटव धर्म कह के, कि ये धोखेबाजी के धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? ये भागवत धर्म है, जो प्रेम का धर्म है, भगवान कृष्ण के प्रति जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। और ये धर्म किसके लिए है? कौन योग्य है इस धर्म के लिए? निर्मत्सराणाम सताम, जो सताम, जो लोग सतमार्ग में चल रहे हैं और जिनके हृदय से मत्सर की भावना चली गई है, निर्मत्सराणाम सताम। तो जब लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, सूक्ष्म रीति से या भी स्थूल रीति से, हमें जानना चाहिए कि भक्ति ऐसे हृदय में ज्यादा प्रगति नहीं कर सकती है। तो फिर आगे चल के कुंती महारानी अपने आप के बारे में सोच रही हैं कि जैसा आपने देवकी को बचाया, उसी तरह से आपने हमें भी हमारे बच्चों के साथ बचाया है। वो कहती हैं, च सह आत्मजा, आत्मजा, आत्म मतलब स्वयं, जा मतलब जन्म लेने वाले, आत्मजा मतलब मेरे बच्चे, मुझे और मेरे बच्चों को विमोचिता अहम, मुझे और मेरे बच्चों को विमोचिता, आपने मुक्त कर दिया। किससे मुक्त कर दिया? महत विपत गणात, मुहुर, मुहुर मतलब बार बार आना, विपत गणात मतलब कठिनाइयां, बहुत सारे कष्ट। तो बार बार एक के बाद एक मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में कष्ट आए, मुहुर विपत गणात, और ऐसे कठिनाइयों से आपने हमें मुक्त कर दिया। आप जो कि हमारे नाथ हैं, त्वयैव नाथेन, आप हमारे रक्षक हैं। तो कुंती महारानी इस प्रकार से याद कर रही हैं कि आपने हमें सारे जीवन भर जो कष्ट हुए, आप ही हैं जिन्होंने हमें इन कष्टों से मुक्त कर दिया। श्रील प्रभुपाद और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुंती महारानी के ऊपर देवकी की तुलना से ज्यादा कृपा बरसाई। पता है क्यों? यशोदा मैया और देवकी मैया, इन दोनों की तुलना में भगवान कृष्ण ने माता यशोदा के ऊपर ज्यादा कृपा की। क्यों? ज्यादा समय उनके पास बिताया, बाल लीला वहां पर की, जिनका दर्शन यशोदा मैया और नंद महाराज ने किया, जिसको कि जिसका दर्शन वसुदेव और देवकी नहीं कर पाए। तो ये हुई यशोदा और देवकी की बात। अब कुंती महारानी और देवकी देवी की बात चल रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कुंती महारानी के ऊपर ज्यादा उन्होंने कृपा की देवकी की तुलना से। क्यों ऐसे? हाँ, कर्म भूमि की के सामने भी थी जब वो द्वारका में थी। हाँ, उनके पुत्रों को भी बचाया, ये सही उत्तर है। देवकी को पुत्रों को नहीं बचाया कृष्ण ने, देवकी के पुत्रों की हत्या हो गई देवकी के आंखों के सामने, उनको यो दुख देखना पड़ा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, एक के बाद अपने 6 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना और अपने ही भाई ने ये हत्या की, तो कितने बड़े दुख की बात है। लेकिन कुंती महारानी के 5 पुत्र, 3 और माद्री के 2 जो अपने ही पुत्र के समान थे, उनके लिए 5 पुत्रों को और उनको भी बार 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 बचाया। और ऐसा क्यों किया, क्यों किया कृष्ण ने, क्यों थी? हाँ, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कुंती महारानी विधवा थी। कम से कम देवकी के पास अपने पति तो थे, लेकिन कुंती महारानी के पास पति नहीं थे। बहुत कठिनाई से उन्होंने अपने छोटे से बच्चों को बड़ा किया ऐसे वातावरण में जो कि द्वेष से भरा हुआ था। बचपन से ही, जब से कुंती महारानी वन से वापस चली आई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जबकि पांडु की मृत्यु हो गई थी, और ये दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हालांकि वो भी छोटा बच्चा था उस समय। ये ईर्ष्या जो है बचपन से होती है, जैसे शिशुपाल के बारे में भी बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जिससे पहले कि वो बात करना सीखे वो कृष्ण से बहुत द्वेष करता था, शिशुपाल दमघोष का पुत्र। और दुर्योधन भी इसी तरह से बचपन से ही पांडवों से द्वेष करता था। तो उस समय से कुंती महारानी चिंतित थी, और उस समय से उन्होंने उनको पाला पोसा, बहुत कठिनाई से उनकी रक्षा की। पति साथ में नहीं थे, निस्सहाय थी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि कुंती महारानी के साथ उनके पति नहीं थे, वो अकेली थी, निस्सहाय थी, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत कृपा की। वैसे जो निस्सहाय भक्त होते हैं उनको ज्यादातर भगवान कृष्ण ज्यादा कठिनाई में डालते हैं, जिससे कि वो और तीव्रता से उनके ऊपर निर्भर रहें और उनके शरण में जाएं। जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती हैं भक्तों के जीवन में, वैसे वैसे वो ज्यादा तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेते हैं, और जितने तीव्रता से वो शरण लेते हैं, आसक्त होते हैं भगवान के प्रति, उतनी ज्यादा वो अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन की सफलता के लक्षण क्या है, थर्मोमीटर क्या है, नाप तोल कैसे करना है हमको कि कौन कितना ज्यादा अपने जीवन में सफल बना है, कि कौन किसने कितना ऊंचा पद प्राप्त किया समाज में, किसने सबसे ज्यादा धन कमाया? नहीं, लक्षण यह है कि कौन किसने सबसे ज्यादा आसक्ति प्राप्त कर ली भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यह सफलता की निशानी है। और जानबूझकर जब श्री कृष्ण देखते हैं कि भक्त उनके शरण में आना चाहते हैं, तो उनको जानबूझकर कठिनाई में डालते हैं। तो ये भ्रमित होने की बात नहीं है, कई बार भक्त ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि अरे हमें इतने कष्ट थे बाहर, और कष्टों से दूर होने के लिए हम यहां पर आए, हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति करने के बाद ज्यादा कष्ट बढ़ गए हमारे जीवन में। इसका मतलब है कि कृष्ण आपके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। यस्य हम अनुघृणामी हरिष्येतत् धनं शनैः। जब भगवान किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तो उनका सब कुछ छीन भी लेते हैं। तो अगर भगवान कुछ भक्त के जीवन में करते हैं तो उस भक्त के भलाई के लिए ही है। इसका मतलब है कि कुंती महारानी के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कृपा की, जानबूझकर उनको कष्टों में डाला। आगे चल के इसके 2 श्लोक बाद कुंती महारानी वर्णन करने वाली हैं कि कैसे उन्होंने इन कष्टों को देखा, किस दृष्टि से इन कष्टों को देखा, कैसे इन कष्टों को अपने जीवन में स्वीकार किया, किस भावना से, वो हम कल सुबह देखेंगे या आज दोपहर को, आज संडे है तो आज दोपहर को इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो खैर, अब कुंती महारानी कह चुकी हैं मुहुर विपद गणात, बार बार तरह तरह के कष्ट आए। तो ये कौन से कष्ट आए, इनका वर्णन तो करना है ना। तो अब अगले श्लोक में अर्थात 24वें श्लोक में कुंती महारानी अब इन कष्टों का लिस्ट देने वाली है, क्रमशः पार्शियल लिस्ट है, पूरा लिस्ट नहीं है, क्योंकि इतने कष्ट हुए हैं कि वो कितने सारे पन्ने भरते जाएंगे। तो थोड़ा सा एक झलक दे रही है कि कौन से कष्ट हमको झेलने पड़े जिनमें से कि भगवान कृष्ण ने हमें मुक्त कर दिया। तो आइए ये 24वां श्लोक पढ़ते हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। माता देवकी को थोड़े समय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कष्ट में डाला, लेकिन कुंती महारानी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बच्चों के साथ सालों तक डाला। जबकि बच्चे छोटे थे, जब वो बच्चे बिल्कुल छोटे उस समय उनके पति गुजर गए, तब से उनके कष्ट शुरू हो गए, बल्कि उसके पहले, क्योंकि पांडव को शाप लगा था कि संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जंगल में चले गए। तो कहां एक राजकुमारी जो कि राजमहल के सुविधाओं से आदि है, और उसे जाकर अब जंगल में रहना पड़ रहा है। और इस तरह से शुरुआत से जब तक कि कुंती महारानी अंत तक रही, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी उन्होंने देखा कि कितने एक विशाल मृत्यु, सबकी मृत्यु, लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, उनके सारे वंश का प्राय नाश हो गया। शुरुआत से अंत तक कष्ट ही कष्ट, कितने सालों तक ये देखना पड़ा कुंती महारानी को। और अब यहां पर वो उन दोनों को याद कर रही हैं जबकि पांडवों को पुनः राज प्राप्त हो गया था, और श्री कृष्ण अब जा रहे हैं द्वारका वापस, तो इनका स्मरण कर रही हैं। ऐसे थोड़े कष्टों को वो सामने रख रही हैं कृष्ण को याद दिलाने के लिए। कृष्ण को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए कुंती महारानी बोल रही हैं। और कौन से हैं ऐसे कई 7-8 कष्टों को याद कर रही हैं। पहले वो कहती हैं विशान, मतलब कि मेरे बच्चों को दुर्योधन और उनके भाइयों ने विष खिलाया था। एक बार धृतराष्ट्र ने भी विष खिलाने का प्रयास किया था। एक बार जब सारे पांडव और कौरव लड़के थे, युवक थे, उस समय भीम इतने शक्तिशाली थे कि खेल कूद में वो हमेशा कौरवों को हराते थे। और कभी कभी, जैसे आजकल की भाषा में बोलते हैं, भीम बहुत दादागिरी करते थे कौरवों के अन्यों के साथ में, सारे भाइयों के साथ में, और उनको उठाकर कभी फेंक देते थे, इतने शक्तिशाली थे। जब नदी के तट पर जाते तो उनको उठाते और नदी में फेंक देते। जब वो तैरने जाते तो भीमसेन जाके उनको पानी में अंदर डालते, और जब भीमसेन पानी में जाकर अपने हाथ उछालते तो पानी में इतनी लहरें हो जाती हैं कि सब लोग पानी में तैर नहीं सकते। तो दुर्योधन के हृदय में भीमसेन के प्रति विशेष करके बहुत ईर्ष्या होती थी, और वो हमेशा कुछ न कुछ योजना बनाते थे कैसे भीम को खत्म किया जाए। फिर एक बार दुशासन के साथ उसने एक योजना बनाई कि एक सारे पांडवों को और कौरव साथ में जाएंगे नदी के तट पर, वहां पिकनिक करेंगे, जैसे हम कल नदी के तट पर गए थे पिकनिक करने के लिए, लेकिन दुर्योधन के विचार क्या थे कि विष से मैं मार डालूंगा भीमसेन को। तो सब खेलकूद के बाद स्नान करके सब सबकी भूख लगी, सबको भूख लगी थी, तो सब बैठे दावत के लिए। दुर्योधन भीम के पास जाकर बैठ गया और विशेष करके जो जिस भोजन में विष डाला हुआ था दुर्योधन ने अपने हाथों से डाला था ताकि कहीं किसी भूल चूक ना हो जाए, और भीम के सामने लाए। भीम को कुछ पता नहीं, भोजन देखा भीम खुश हो गए, उन्होंने बहुत खाया बहुत खाया। और हालांकि इस भोजन में 100 आदमियों को मारने के समान जितना विष था, फिर भी भीमसेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसे लग रहा था। और दुर्योधन बड़े चिंता से देख रहे थे कि विष का कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन भीमसेन तो बड़े जोरों से अभी भी उठवा के सबको फेंक रहे पानी में। ऐसे सब लोग थक गए, वापस जाने का समय हुआ, एक एक करके सब वापस जाने लगे अपने राजमहल में। तब धीरे से उस विष का असर भीमसेन के ऊपर पड़ने लगा और शाम के समय फिर वैसे भी बहुत खा लिए थे तो नदी के तट पर सोने लग गए। अब विष का असर पड़ गया तो दुर्योधन और दुशासन ने मौका देखा, भीमसेन को कड़क रस्सियों से बांध दिया और धक्का मार दिया नदी के अंदर, और भीमसेन पानी में नीचे चले गए और वजन के द्वारा नीचे 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 गए। लेकिन भगवान की योजना से एक ऐसे पथ से गए कि नदी में अंदर पानी में सीधे से नागलोक में पहुंच गए, और वहां पर कई नागों ने देखा कि अरे ये कौन मनुष्य हमारे राज्य में आ गया अचानक बिना अनुमति के। तो वहां के जो पहरेदार थे नागलोक के, उन्होंने डस दिया भीमसेन को। तो डसने से हुआ ये कि वो बिल्कुल वही सही दवा थी उस विष के लिए, तो वो विष का जो असर है वो उसी तरह समाप्त हो गया। तो भीम जाग गए, अरे ये क्या है, मुझे बांधा हुआ है पानी के नीचे, सांप काट रहे हैं, आया बड़ा गुस्सा। आसानी से उस रस्सी को तोड़ दिया और एक के बाद एक सारे सांपों को पकड़ पकड़ के मारने लगे, किसी को अपने पैरों के तले जो है कुचलने लगे। तहस नहस हो गया नागलोक में, सब लोग भागते भागते वसुकी के पास गए जो नागों के राजा हैं, कि अरे ये क्या हो गया, ये कोई मनुष्य आया है यहां पर। तो वसुकी भी चिंतित हो गए कौन है। तो और एक नागलोक के निवासी थे जिनका नाम था अर्क, वो वास्तव में कई साल पहले मनुष्य समाज में रहा करते थे और वो कुंती महारानी के पूर्वज थे, उनके परदादा या दादा के परदादा के भी दादा थे ऐसे कुछ। तो उन्होंने देखो जाके देखते हैं ये कौन है, और जाके तुरंत पहचान लिया कि ये भीमसेन है, ये मेरा वंशज है, आलिंगन किया। तो वसुकी ने देखा कि अच्छा ये अर्क के वंशज हैं तो इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो उनको अच्छी तरह से स्वागत किया, नहलाया, अच्छे वस्त्रों पहनाया, कहा कि क्या वरदान चाहिए। तो अर्क ने कहा कि भीमसेन को हमें नागलोक में जो रस पीते हैं वो रस देना चाहिए। तो उनको वो रस का पान कराया, और ये रस का पान क्या है, जिससे कि भीमसेन को 10,000 हाथियों की शक्ति मिल गई। वैसे भी भीमसेन शक्तिशाली थे, और अब ये अमृत का रस का पान करके उनको 10,000 हाथियों की शक्ति मिल गई। वैसे नागलोक के निवासी भी इस रस को ज्यादा मात्रा में पी नहीं सकते थे, बहुत शक्तिशाली है ये। लेकिन भीमसेन के सामने एक मटका रखा गया, एक बार उसमें पक करके पी लिया। नाग जो है आश्चर्यचकित हो गए, और भीमसेन और मांग रहे थे, और रस चाहिए अणि और। उनके सामने दूसरा मटका रखा गया, वो भी एक बार में पी लिया। सारे नाग लोग मुंह खोल के देख रहे थे क्या है। ऐसे 8 मटके एक के बाद एक, एक के बाद पी लिया, और फिर उनको नींद आ गई। तो इतना पी लिया था, उसको पचन करना था, तो 9 दिन तक पूरे वो सोए रहे, क्योंकि उसका पचन होना था ना उस रस का। उधर सभी लोग चिंतित, कुंती महारानी बहुत चिंतित, क्योंकि कुंती महारानी को मालूम था कि दुर्योधन का स्वभाव क्या है। विदुर के पास गई, विदुर अब क्या होगा, भीमसेन आया नहीं है, 8 दिन हो गए। तो विदुर ने सांत्वना दी, नहीं, व्यास देव ने भविष्यवाणी की है कि आपके 5 पुत्र जो हैं वो चिरंजीव रहेंगे, बहुत लंबी आयु होगी इनकी, चिंता नहीं कीजिए, आएगा भीम। और फिर जब भीम जाग गए तो नागों ने उनको अच्छी तरह से वस्त्रों से आभूषणों से सजाया और उनको वापस भेज दिया कि जाओ। और फिर वही नदी के तट में जहां पर वो लेटे हुए थे वहां उनको पहुंचाया, और भीमसेन बड़े उत्साह से, अब तो और 10,000 हाथियों की शक्ति थी, वो वापस चले गए। और सब पांडव बड़े खुश हो गए और उन्हें बताया युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी को कि क्या हुआ है। सार युधिष्ठिर महाराज को ऐसा हृदय पर धक्का पड़ गया, वो जानते थे कि दुर्योधन दुष्ट है, उसके हृदय में ईर्ष्या है, पर इस हद तक वो काम करेगा दुर्योधन को युधिष्ठिर को मालूम नहीं था। फिर सबने एक अपनी मीटिंग ली, सभा बुलाई पांडवों ने कुंती महारानी के साथ, और युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया कि इस बात को किसी को भी नहीं बताना है। उस उम्र में भी युधिष्ठिर महाराज बड़े बुद्धिमान थे, किसी को भी नहीं बताना है क्योंकि नहीं तो और इनकी ईर्ष्या बढ़ जाएगी और हमको मारने का प्रयास करेंगे, चुप रहना इसके बारे में। लेकिन कुंती महारानी ने जाकर विदुर से बताया, विदुर भी बड़े बुद्धिमान थे, विदुर ने कहा जो युधिष्ठिर कह रहा है वही सही है, चुप रहो इसके बारे में, किसी को नहीं बताना। लेकिन इस दिन के बाद सारे पांडव और कुंती महारानी हमेशा सतर्क रहा करते थे, बहुत सावधान रहते थे दुर्योधन और उनके भाइयों से। तो इस प्रकार से ये विष पान करने का कष्ट हुआ। महाग्नेह, महाअग्नि, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को आदेश दिया कि आपके लिए एक रमणीय वातावरण मैंने तैयार किया है, यहां से दूर मैंने आपके लिए एक महल बनाया है, वहां जाकर आप जितना चाहे वहां भोग कर सकते हैं, आपके लिए तरह तरह के मनोरंजन के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। तो विदुर ने आके उनसे कहा कि खबरदार, और यहां पर जो है ये धृतराष्ट्र आपको मारने का प्रयास कर रहा है। तो पांडव गए, युधिष्ठिर ने फिर से सभा बुलाई पांडवों की, ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मेरा मत है कि हमको जाना चाहिए, आखिर धृतराष्ट्र जो हैं वो हमारे पालक हैं और उनकी बात नहीं मानना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना ये ठीक नहीं होगा, तो हमें जाना चाहिए। लेकिन वहां जाकर फिर उन्होंने व्यवस्था की कि जमीन के नीचे से उन्होंने एक रास्ता बनाया और जंगल में वो निकल पड़े। लेकिन उसके पहले हुआ ये कि एक शूद्रानी आई थी वहां पर उसके 5 पुत्रों के साथ, और ये सब शराब पीकर मस्त थे, तो उनको यहां पर अंदर बुलवाया। पांडवों ने सोचा अच्छा मौका है, और फिर अग्नि चल गया और वो निकल पड़े वहां से, और सबने सोचा कि पांडवों की मृत्यु हो गई, लेकिन पांडव जो है वो सही जगह सही सलामत निकल गए थे। विदुर ने उस व्यक्ति को भेजा था जिसने जमीन के नीचे से वो रास्ता बनाया। हम सब ये बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, तो इसके बारे में और विस्तार में नहीं बोलेंगे। तो ये कितनी कठिनाई थी, हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी और उनके 5 बच्चों को कितना हृदय पे धक्का पड़ा होगा कि अपने भाई हमको बार बार ऐसे जान से मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए ये ईर्ष्या इस जगत में कैसे होता है कि ईर्ष्या की वजह से व्यक्ति अपने निकट के जो संबंधी है उनको भी मार डालने के लिए भी हिचकिचाता नहीं है व्यक्ति। हम देखते भी हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये केवल पांडव और कौरवों की बात नहीं है, आजकल एक कुटुंब में भी एक ही पिता से जन्म लेने वाले बच्चे भी आपस को खून कर देते हैं, आपस में मार डालते हैं केवल थोड़े धन के लिए, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए। तो ये है ईर्ष्या। तो दुर्योधन जो है मूर्तिमान, ईर्ष्या के मूर्तिमान स्वरूप है। और फिर आगे कुंती महारानी कहती हैं, पुरुषाद पुरुष अद दर्शनाद, पुरुष अद मतलब पुरुषों मनुष्यों को खाने वाले, मतलब राक्षस, जो राक्षस होते हैं वो मनुष्यों का खून पीना, मनुष्यों का मांस खाना पसंद करते हैं। तो वन में जाकर ऐसे कई राक्षसों का वध करना पड़ा पांडवों को, उनमें से एक राक्षस का नाम बताइए, बकासुर का वध उन्होंने किया, ऐसे राक्षस था, और कौन, हिडिंब राक्षस, बड़ा भयंकर राक्षस था वो आया पांडवों को खाने के लिए। और विशेष करके रात के समय जो है ये राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, और ये आए वहां पर और खाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको, लेकिन भीमसेन ने उनको हिडिंब का वध कर दिया। और उसके बाद में हिडिंब की बहन थी जिनका नाम था हिडिंबा, तो हिडिंबा आकर्षित हुई भीमसेन के शूरवीरता को देखकर, सौंदर्य को देखकर, तो विवाह करना चाहती थी। भीमसेन ने कहा नहीं, मैं अब मेरे भाइयों के साथ मेरी माँ के साथ हूं, उनकी रक्षा करना मेरा काम है, मेरा विवाह करने के लिए मुझे कोई समय नहीं अभी। तो हिडिंबा जो है वो युधिष्ठिर महाराज और कुंती महारानी के पास गई, और कुंती महारानी ने फिर भीमसेन को आदेश दिया कि नहीं विवाह कर लो। भीमसेन ने विवाह कर लिया और फिर घटोत्कच का जन्म हुआ। जिन्होंने कि पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, घटोत्कच की मृत्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुई। तो ऐसे कई राक्षस आए और कुंती महारानी की दशा देखिए, ऐसे कष्ट एक के बाद एक भयंकर राक्षस भी आ रहे थे आक्रमण करने के लिए। फिर आगे कुंती महारानी वर्णन करती हैं असत सभाया, उस असत सभा का स्मरण कर रही हैं जहां पर द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास हुआ था। वैसे हुआ ये कि पहले से ही धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी सब ईर्ष्या करते थे पांडवों से। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि मेरा जन्म तो अंधे अवस्था में हो गया, इसलिए मुझे राज नहीं मिला, लेकिन मेरे भाई की मृत्यु हो गई इसलिए मुझे राज अब मिला है, जो कि वास्तव में अधिकार पांडु के पुत्रों का है, क्योंकि जो राजा होता है उसके ही पुत्र राजा बनते हैं उनके बाद। लेकिन मुझे अब नियंत्रण मिला है राजगद्दी के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र राजा बने, पांडु के पुत्र नहीं। और दुर्योधन के हृदय में तो बहुत ईर्ष्या थी, तो एक बार शकुन के सहायता से उन्होंने जुआ खेलने के लिए निमंत्रण किया। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर कोई उसे चुनौती देता है युद्ध के लिए और जुए के लिए, तो वो इनकार नहीं कर सकता है। तो उन्होंने स्वीकार किया और सब कुछ खो डाला एक के बाद एक, धोखेबाजी से चीटिंग कर रहे थे शकुनी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बड़े सरल थे स्वभाव से, इस बात को समझ नहीं पाए और कुछ कर भी नहीं पाए, और आखिर सब कुछ खो दिया, अंततः द्रौपदी को भी खो दिया। अब और पीछे इतिहास ये है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो उस समय कई राजकुमार वहां पर आए थे, क्योंकि द्रौपदी का सौंदर्य के बारे में सब लोग जानते थे। तो कई जगह जगह से ये राजकुमार आए थे, और द्रौपदी के पिता द्रुपद राजा ने एक प्रतियोगिता रखी थी, और जिस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सफल होगा वही द्रौपदी के हाथ के लिए योग्य होगा। और वो आप जानते हैं क्या प्रतियोगिता थी, एक मछली को ऊपर रखा गया था जो घूम रहा था, और उस मछली के आंखों को तीर से मारना था बिना देखे हुए, प्रतिबिंब जल में देखते हुए। और इस प्रकार से कई लोगों ने प्रयत्न किया, अर्जुन सफल हुए। उस समय जब द्रौपदी ने देखा कि कर्ण भी यहां पर आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कर्ण से विवाह नहीं करना है, केवल अर्जुन से करना है, अगर कर्ण यहां पर भाग लेंगे तो कर्ण जीत जाएंगे, फिर मुझे कर्ण से विवाह करना होगा। इसलिए द्रौपदी ने उस समय शर्त रखा कि यह तो प्रतियोगिता केवल क्षत्रियों के लिए है, जो अन्य हैं, जो शूद्र हैं, उनके लिए नहीं है। तो अकेले एकमात्र कर्ण थे, तो कर्ण को बहुत अपमान लगा। वास्तव में कर्ण क्षत्रिय थे, किसके पुत्र थे कर्ण, सूर्यदेव और कुंती महारानी के पुत्र थे, और सूर्यदेव तो क्षत्रियों के सूर्य वंश के तो शुरू करने वाले हैं, आदि हैं। तो कर्ण वास्तव में शूद्र थे, लेकिन कुंती महारानी उनको त्याग दिया था, इसलिए अधिरथ नाम के एक जो सुतार हैं उन्होंने उनको दत्त लिया था, अपने पुत्र के रूप में लिया था। हालांकि कर्ण जो है वो क्षत्रिय थे, परंतु द्रौपदी को और अन्य को पता नहीं था, उनको शूद्र समझ रहे थे। तो क्षत्रिय खून बह रहा था कर्ण के नसों में, तो बहुत अपमानित हुए और ये अपमान कभी भी भूले नहीं। और इस समय जब जुए के बाद जब युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो उस समय कर्ण सामने आए कि हम द्रौपदी को देखना चाहते हैं। फिर द्रौपदी वहां लाई गई और फिर कर्ण की वजह से वास्तव में उनका वस्त्र हरण आरंभ हुआ। दुशासन ने उस समय अपने हाथों से द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया, और उस समय पांडव युधिष्ठिर महाराज के वचन से बद्ध थे, इसलिए वो अपने आप को रोक रहे थे। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई थी हो रही थी उनको अपने आप को रोकने के लिए। और उस समय भीमसेन ने वचन लिया, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी को अपने जंघाओं के ऊपर ऐसे इशारा करते हुए कहा कि यहां पर आओ, तो भीमसेन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि उन्हीं जंघाओं को मैं युद्ध भूमि में अपने हाथों से नष्ट करूंगा, तोड़ दूंगा। और वास्तव में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीमसेन ने ऐसे ही किया दुशासन को, और दुर्योधन को भी उन्होंने ऐसे किया। तो उस समय क्योंकि भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इत्यादि सारे बुजुर्ग बैठे थे। जो लोग ऐसे करते हैं वो तो दुष्ट है ही, लेकिन जो लोग ऐसे चीज को सहन करते हैं, कुछ करते नहीं है, वो भी असत माने जाते हैं। इसलिए ये असत सभा में जब ऐसे हो रहा था, द्रौपदी देवी ने देखा कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तो द्रौपदी देवी ने निजी अपने हाथों से प्रयत्न किया, नहीं हो पाया। फिर एक हाथ से अपनी रक्षा की, एक हाथ से भगवान को पुकारा, नहीं आए। फिर द्रौपदी देवी ने जब देखा कि मुझे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तरह से शरण जाना है, उन्होंने कृष्ण का नाम जोर से पुकारा, उस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसका मतलब है कि जब हम अपने पास कुछ रखते हैं और थोड़ा सा शरण में जाते हैं, तो भगवान उतनी ही मात्रा में हमारे रक्षा के लिए आएंगे। अगर हम पूरी तरह से भगवान के हवाले गए तो भगवान पूरी तरह से हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, तो फिर उस हद तक भगवान नहीं आएंगे। भगवान बोलेंगे कि तुम अपनी रक्षा खुद करना चाहते हो ना, कर लो, मैं उतनी हद तक आऊंगा जितना तुम मेरे शरण में आए हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। तो जब द्रौपदी देवी ने पूरी तरह से आश्रय लिया श्री कृष्ण का, तब श्री कृष्ण ने वस्त्र के रूप में अवतार लिया, और फिर वस्त्र खींच खींच कर दुशासन थक गया, फिर समझ गए कि ये वस्त्र हरण संभव नहीं है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु कुंती महारानी याद कर रही है उस असत सभा का, जहां की ऐसे ऐसे कष्ट, भयंकर कष्ट, वो भी क्षत्रिय के लिए जो ये असहनीय है। और युधिष्ठिर महाराज की ओर सारे पांडव देख रहे थे कि कुछ एक इशारा दे, हम उठ के सब कुछ खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, मैंने वचन दे दिया, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। इसलिए बाद में भी वन में भीम और अर्जुन विशेष करके हर रोज युधिष्ठिर महाराज को याद दिलाते रहते थे, सब आपकी वजह से हुआ। और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको शांत करते हैं, देखो धर्म के पथ में चलना चाहिए, शांत रहो। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते थे। अगले दिन जब वो द्रौपदी को देखते थे, फिर से सब आपकी वजह से हुआ। अर्जुन तो अपने गांडीव बाण को हमेशा मालिश करते रहते थे, कब वो दिन आएगा, उसको तेल लगा के बड़ा अच्छा ठीक ठाक करते थे, कब वो दिन आएगा। और भीमसेन को इतना गुस्सा आता था, वो उस दिन को याद आता था जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, फिर वो तो कभी कभी इतने चंचल हो जाते थे, इतना विचलित हो जाते थे कि वो पेड़ों को उखाड़ कर फेंकते, कुछ तो करना चाहिए, इतना गुस्सा आता था उनको, क्या करें। लेकिन फिर से उनको युधिष्ठिर महाराज शांत करते, नहीं, धर्म के पथ पे चलना है। द्रौपदी देवी भी कोसती थी उनको, बहुत गुस्सा हो जाती थी, फिर सोचती, नहीं, मेरे पति, हमको संभाल लेना चाहिए। वो कहती थी, आप क्षत्रिय होकर आप इन भक्त ये ऋषि मुनियों के साथ बैठे दिन भर कथा सुन रहे हैं, ये क्या अभी कुछ युद्ध करना चाहिए? तो सही समय पर सब होगा, सही समय पर होगा। तो कुंती महारानी भी उन दिनों को याद कर रही हैं, क्या क्या, कौन से कठिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में से उनको गुजरना पड़ा था। वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के समय कितना कष्ट हुआ उनको, तरह तरह के, जंगल में जीना मतलब आसान नहीं है। हम आजकल शहर की जो सुविधाएं हैं, इनके आदि हो गए हैं। हर चीज के लिए बटन दबाओ, कुछ भी, सब तैयार, बिजली है, बटन दबाओ, ग्राइंडर, मिक्सर, किचन, बटन दबाओ, सब कुछ के लिए बटन चलता है काम। लेकिन वह जंगल में क्या था, कितना कष्ट था वहां पर, और कुंती महारानी को ये कष्ट पुनः सहन करना पड़ा 13 साल के लिए, 12 साल वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास में। और यह शर्त था कि 13वें साल में उस अज्ञातवास के समय अगर कोई उनको पहचान ले तो फिर से 12 साल का वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो उस 13वें साल में सारे पांडव विराट महाराज के राज में गए और उनके दरबार में अनेक सेवाएं करने लगे। भीमसेन जो है वो रसोई घर में रसोईया बन के आए, अर्जुन वो नाट्य नृत्य सिखाने के लिए गए, और विराट महाराज की जो कन्या थी, पुत्री उत्तरा, उनको नृत्य सिखाते थे, और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए उत्तरा का हाथ जीत लिया। फिर उत्तरा का विवाह जो है वो अभिमन्यु के साथ हुआ। तो ऐसे कितने कठिनाई से ये 13 साल बीत गए। पहले 12 साल जंगल में, फिर महाराज विराट के राज्य में, यहाँ कुंती महारानी उन कष्टों को याद कर रही हैं। और फिर मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहां महारथी हुआ करते थे, इतने सारे बड़े बड़े योद्धा थे जिनके सामने मेरे लड़के कुछ भी नहीं थे, छोटे बच्चों के समान थे, फिर भी आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। जैसे सेना में कई पद होते हैं, कोई कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ऐसे फील्ड मार्शल ऐसे होते हैं ना, वैसे पुराने जमाने में भी हुआ करते थे। एक रथी, अतिरथी, महारथी। एक रथी मतलब जो अपने रथ में होते हुए एक रथ वाले व्यक्ति से युद्ध कर सकता है एक साथ में, वो एक रथी है। तो केवल एक रथी आपस में युद्ध करते थे, एक रथी महारथी के साथ नहीं जाते थे, महारथी एक रथी के साथ युद्ध नहीं करते थे, महारथी केवल महारथियों के साथ करते थे। अतिरथी मतलब अनेक रथियों के साथ, महा मतलब बहुत सारे योद्धाओं के साथ एक साथ वो युद्ध कर सकते थे। तो ऐसे कितने सारे एक रथी अतिरथी की बात तो दूर है, महारथी कितने सारे थे, जैसे कर्ण, भीष्म, द्रोण, जिनको परास्त करना अर्जुन के लिए भी प्राय असंभव था। लेकिन कुंती महारानी कह रही कि केवल आपकी कृपा से यह संभव हो गया। परीक्षित महाराज भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि वास्तव में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि ये एक विशाल सागर के समान था, जिसमें कि बड़े बड़े तिमिंगल रहते हैं। तिमिंगल मतलब ये ऐसे जलचर प्राणी हैं जो इतने बड़े हैं, मीलों मीलों लंबे हैं, और वो बड़े बड़े व्हेल, व्हेल जो होते हैं ये भी बहुत बड़े पशु होते हैं समुद्र में, ऐसे व्हेल को निगल लेते हैं, आसानी से निगल लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो कह रहे हैं कि ये महारथी जो थे कई बड़े बड़े तिमिंगल के समान थे, और मेरे लड़के वो तो छोटे छोटे मछलियों के समान थे। परीक्षित महाराज कहते हैं जो मेरे दादा थे छोटे छोटे मछलियों के समान, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की कृपा से ही वो विजय निकले। जैसे भगवान कृष्ण भी, संजय भी भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर मम, कि जहां श्री कृष्ण हैं, जहां उनके भक्त अर्जुन हैं, वहां नीति, वहां जीत, वहां ऐश्वर्य सब कुछ आ जाएगा। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी को मरना है तो कितना भी बड़ा डॉक्टर आ जाए, कितनी भी बड़ी दवाइयां आ जाए, जिसको मरना है वो मरेगा। और अगर किसी को नहीं मरना है, कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं, तो खतरनाक से खतरनाक एक्सीडेंट, बीमारी से भी व्यक्ति बच सकता है। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं रावण का, कि रावण श्री कृष्ण का उपासक था, शिवजी ने उनको वरदान दिया था कि मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, लेकिन प्रभु रामचंद्र अपने तीर चलाने लगे तो उस समय शिव जी नहीं आए। पार्वती देवी ने शिव जी से कहा कि अरे तुम्हारे उपासक हैं, जाओ रक्षा नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब स्वयं भगवान है उनके सामने हैं, जब भगवान चाहते हैं तो उनको उसको मारने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ के बाहर है ये, तो फिर मैं क्यों जाऊं, जब मैं रक्षा नहीं कर सकता उसकी, तो मेरे जाकर वहां क्या लाभ होगा। इस प्रकार से शिव जी भी वहां पर बेसहारा, कुछ नहीं कर पाए। और फिर कुंती महारानी कहती हैं ये सब पहले युद्ध के पहले ये सब कष्ट हुए, और अब इस समय द्रोण अस्त्रतः च अस्मा हरे भी रक्षिता, आपने हमारी रक्षा की, और अब भी इस समय जब द्रोण पुत्र द्रोण अश्वत्थामा उसने ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया, फिर से आपने हमारी रक्षा की। पहले दिन में हम वर्णन कर रहे थे संक्षेप में कि कैसे युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उनका सर काट दिया, और 5 सर जो है वो दुर्योधन के पास लेकर आए। दुर्योधन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और वो उठ नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, अपने पीठ पर लेटे हुए थे युद्ध भूमि पर, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। और उस समय पांच सर लेकर आया अश्वत्थामा वहां पर, मैंने पांच पांडवों की हत्या कर दी। तो दुर्योधन खुश हो गया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे देखना है कि वास्तव में पांडव है कि और कोई है। तो उन्हें परीक्षा की, उन सरों की दबाया, वो कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया। तो ये पांडव नहीं है, उनके बच्चे होंगे, लड़के होंगे, पांडव ऐसे नहीं होंगे। तो फिर अश्वत्थामा ने स्वीकार किया कि हाँ ये पांडव नहीं है, ये वास्तव में पांडवों के पांच पुत्र हैं। तो उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हो गया कि तुमने सोए हुए लड़कों को मारा, बहुत अच्छा नहीं किया तुमने। और मैं सोच रहा था कि हम सबकी मृत्यु तो होनी है, लेकिन कम से कम ये पांच पुत्र भी अगर रहेंगे तो हमारा वंश आगे चलेगा, लेकिन तुमने इसको भी नष्ट कर दिया है। तो ऐसे बहुत ही दुखद अवस्था में इस बात के ऊपर दुख करते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। ये सब महाभारत में सब कथाएं आती हैं। और उसके बाद फिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन का दुख देखने के बाद भी दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया कि एकमात्र जो पांडव के वंशज थे, जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जो कि उत्तरा के गर्भ में थे, उनकी हत्या करने के लिए फिर भी कृष्ण ने उनको बचाया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। तो कुंती महारानी इन सब कठिनाइयों को याद कर रही हैं और कहती हैं कि केवल आप हैं हे हरि श्री कृष्ण जिन्होंने हमें इन कठिनाइयों से बचाया। और आने वाले श्लोकों में कुंती महारानी कहने वाली हैं कि उन्होंने किस भावना से इन कष्टों का सामना किया, इसके बारे में आज दोपहर में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ कुंती महारानी कैसे स्मरणम में परिपूर्णता प्राप्त कर चुकी हैं। अपने जीवन में जो कष्ट आए उनका स्मरण करते हुए वो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि कष्ट जो है वो भगवान का रूप है और कष्टों से भगवान ने भी हमें बचाया है। तो कष्टों की वजह से भगवान की स्मृति बढ़नी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है, ईर्ष्या जो है जलन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो छह अनर्थों में से एक है। और ये एक ऐसे अनर्थ है जो कि भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जा सकता है। तो इस महान शत्रु जो कि हमारे हृदय में है, इसके प्रति हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान के पवित्र नामों का जाप करके, भगवान के भक्तों के सामने नम्र रहकर हम ईर्ष्या भावना को नष्ट कर सकते हैं। ईर्ष्या की वजह से हम दूसरों की निंदा करते हैं, तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय में जलन है, ईर्ष्या है, उनके अच्छे गुण देखने का प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा नहीं, हृदय से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे अगर उनकी प्रशंसा करेंगे, हर एक व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करेंगे तो ये जो दोष ढूंढने की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। ईर्ष्या का के विपरीत क्या है? दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरों में अच्छे गुण देखने चाहिए और इस प्रकार से हमारे अंदर जो दोष ढूंढने की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण
प्रभु। आपने जैसे बताया कि असत सभा का एक्सप्लेनेशन करते थे, तो जब द्रौपदी देवी की वस्त्ररण हो रही थी तो जब जो लोग बैठे थे वहां पर, मतलब जो कोई भी महारथी बैठे थे उसको भी, मतलब वो भी विक्टिम बनते हैं, वो भी कल्प्रेट बनते हैं जब देखते हैं। तो मेटेरियल हमारे इस जगत में इतने सारे, मतलब बुराई होती है, इतना मतलब गंदा वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं, तो क्या हम देखते हैं इन सबको, तो क्या हमको भी इसके लिए कल्प्रेट बनाया जाता
है? प्रश्न ये है कि इतनी बुराइयां हमारे समाज में हो रही हैं, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी उस बुराई में भागीदार हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। कई हद तक ये सही है। अगर किसी भी बुरे काम में हम भले भाग नहीं लें लेकिन उसको रोकने का भी प्रयास नहीं करें तो वो भी गलत है। जैसे यहाँ एक व्यक्ति दूसरे आदमी को कुछ कर रहा है, खून करने के लिए जा रहा है, और हम यूं ही चुप बैठे उसके बारे में, तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ तो कर, कम से कम चिल्लाना चाहिए, बचाओ, कुछ तो करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, कई ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। हम सारे समाज को बदल नहीं सकते, सारे समाज के बुराइयों को हम खत्म नहीं कर सकते। जितने भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं समाज में, हमारी शक्ति तो नहीं है कि उनको खत्म कराने के लिए। परंतु हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करें और इस भक्ति का प्रचार सारे समाज में करें, तो ये जो अन्याय अत्याचार बुराई करने की जो वृत्ति है लोगों में, वही नष्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बुराई को रोकने का, अन्याय को रोकने का काम है। क्योंकि आज एक आदमी चोरी कर रहा है, आज इसने आप उसने आपने उसको रोक दिया, लेकिन चोरी करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हुई। कल भी जाकर वो दूसरी जगह चोरी करेगा, लेकिन उसके हृदय से चोरी करने की प्रवृत्ति नष्ट कर ली, उसका हृदय शुद्ध कर लिया, तो आपने कितना बड़ा फायदा किया उसको। इसलिए ये भक्तों का योगदान है समाज के लिए। इसलिए हमें अच्छी तरह से भक्ति करना है, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनको हम मिलते हैं उनको कृष्ण का उपदेश देना चाहिए। हाँ जी, माइक वाले में। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, आप बताते हैं जैसे शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो कोई पितृ शब्द का एग्जिस्टेंस है या नहीं?
अवश्य पितृ हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज, लेकिन उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको अपनी गति प्राप्त हुई है, और कोई यहां कोई वहां हम कह नहीं सकते, जानते नहीं सब कहां है। लेकिन हम भक्ति करेंगे तो जितने भी सारे हमारे 7 पीढ़ियां पीछे जो हमारे पूर्वज हैं, उन सब का उद्धार हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां भी 7 पीढ़ियां। और प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे 7 पिछले जन्मों में ऐसे ऊपर नीचे पीढ़ियां हैं, वो भी उनका भी उद्धार हो जाएगा। जितने भी हमारे पितर हैं, वो केवल हमारे कृष्ण भक्ति करने से उनका उद्धार हो जाएगा।
कृष्ण प्रभु जी, when she was trying to protect herself, Krishna didn't really respond to her until she completely surrendered him to him. Now, there is also an example in Bhagavatam regarding a sparrow whose siblings the ocean had taken off, and the sparrow was agitated and trying to protect her siblings. Here, Krishna helped in spite of sparrow not being aware that God is there to help it. And how does this relate?
Prashn ye hai कि प्रवचन में यह बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी देवी पूरी तरह से शरण में नहीं गई भगवान कृष्ण के। लेकिन ऐसे भी एक कथा आती है, जबकि एक चिड़िया जो है जिसके अंडे समुद्र ने चोरी कर ली थी, अपने पानी में ले लिया था, वो सारे समुद्र को पी जाना चाहती थी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण आए, तो ये कैसे हम समझ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कृपालु उनके भक्त होते हैं। तो जब चिड़िया ने देखा, जब चिड़िया उस समुद्र को खाली करना चाहती थी, पी डाल के एक एक बूंद निकाल रही थी, और फिर वहां जाकर फेंक रही थी, फिर से आ रही थी, दूसरा बूंद निकाल रही थी, जा रही थी, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन ऊपर एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए, वो थे गरुड़ जी। गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं, उनके वाहन हैं। उन्होंने देखा कि ये चिड़िया की इतनी दृढ़ता है, प्रसन्न हुए, और ये अन्याय हो रहा है समुद्र के द्वारा, तो समुद्र के पास गए और तुरंत लौटा दो कहा ये अंडे। समुद्र हिचकिचाए तो अपने पंखों से एक धक्का मार दिया और जल यहां से वहां दूर चला गया। फिर समुद्र कहा ठीक है, और फिर सब ये लौटा दिए। तो ये भक्त की कृपा होती है, भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं, और वो देखते हैं कि जब कोई कष्ट में है, कठिनाई में है, वो मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये कथा थोड़ी सी अलग है, लेकिन द्रौपदी देवी की कथा से हम ये सीख सकते हैं कि जिस हद तक हम भगवान के शरण में जाएंगे, उस हद तक भगवान सामने आएंगे। जितना हम चाहते हैं भगवान हमारी रक्षा करें, उतना ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे, बाकी वो हमारे हाथ में रख देंगे। ठीक है, आपको अपनी शक्ति में विश्वास है तो ठीक है, मैं उस हद तक मैं नहीं आऊंगा। तो फिर हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, लेकिन हमें सीमा जानना चाहिए। गोविंद प्रभु उस दिन बरसाना के एक बाबा जी के बारे में बता रहे थे कि जब वो बरसाना में थे और अपने आश्रम में बाहर सोते थे तो एक जंगली पशु वहां पर घूम रहा था, उस सारे प्रांत में आक्रमण करता था, तो सब जगह भय फैल गया था। तो किसी ने पूछा कि आप सोते हैं, जहां भी जाते हैं आप ये छोटा सा लाठी लेकर जा रहे हैं, तो जब जंगली शेर आएगा ये छोटे से लाठी से क्या होगा आपका, एक लाठी से कुछ होगा? तो बाबा जी कहने लगे, होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको राधा रानी को दिखाना तो है, हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अपने को करना चाहिए, थोड़ी सी ताकत तो दी है ना उन्होंने हमको, भले शेर जितनी ताकत नहीं दी हो लेकिन जितना भी ताकत उन्होंने दिया है हमको उसका तो प्रयोग करना चाहिए। तो जहां तक संभव है हमारे लिए, जहां तक हमारे नियंत्रण में हमारे बस की बात है, हमें करना चाहिए। चोर हमारे घर में आए विरोध करना चाहिए, ऐसे नहीं कि चलो भगवान ने भेजा तो चलो निमंत्रण करके उसको चाय वाय पिला के भेज दो, कुछ तो करना चाहिए हमको। जहां तक हमारे लिए संभव है हमको करना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। एक प्रश्न यहां है, ऐसी कौन सी गलती थी कि भगवान ने देवकी माता के ऊपर कृपा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की हत्या अपने सामने देखनी पड़ी। वैसे इसके लिए देवकी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इन पुत्रों का इतिहास है, जो कि पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो, और उन्होंने मरीचि के पुत्र थे, और फिर उन्होंने अपने दादा को देखा कि वो पुत्र के प्रति आकर्षित हुए हैं, वो हंसे तो उनको शाप मिला कि असुर योनि में उनको जन्म लेना है। फिर वो हिरण्यकश्यप के पोते बन गए, और पोते बनने के बाद वो कालनेमी के पास, जो उनके मामा थे, जो उनके पिता थे, उनके पास गए आशीर्वाद के लिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने शाप दिया कि आगे चल के यही आपकी हत्या करने वाला है। फिर उन्होंने पुनः देवकी के गर्भ से जन्म लिया, और फिर कालनेमी उनके भी मामा बने कंस के रूप में, कंस ने उनकी मृत्यु की और वो अपने पूर्व स्थान में देवलोक में ऊपर वो चले गए। तो ये इतिहास है कारण क्यों इन बच्चों की हत्या होनी थी। तो देवकी को ये कष्ट क्यों मिला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट में डालते हैं जिससे कि उनकी भक्ति और बढ़े, ज्यादा ज्यादा वो भगवान का आश्रय लेने लगे, उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति और बढ़ता गया। तो भगवान अपने भक्तों को इसीलिए कभी कभी कष्ट में डालते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कष्ट आते रहेंगे, तो हमें जानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। और देवकी माता को जो कष्ट सहन करने पड़े उससे उनकी भक्ति नष्ट नहीं हुई, भगवान को भूले नहीं वो। उसी प्रकार से जब हम कष्टों का सामना करेंगे तो हमें इन कष्टों को भगवान का देन समझकर भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान के भक्ति से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। अज्ञातवास में नर्तक का रोल किया था तो उनका नाम क्या था? उनका नाम भूल गए हम, बृहत्नल। ठीक है। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को कितने दुख आते हैं, दुख की शुरुआत होती है तो भी पत्नी और पति इतना मालूम होने पर भी आजकल की पत्नी पति से झगड़ा करती है क्यों? अभी हमको नहीं मालूम अब पति पत्नी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, हम तो घर में जाके देखते नहीं हैं। लेकिन अच्छा है कि झगड़े ना हो और साथ में शांति से रहकर दोनों पति पत्नी भगवान कृष्ण की सेवा करें, भक्ति करें। क्या ऐसा है कि क्योंकि गांधारी कुंती के पहले पुत्र के प्रति ईर्ष्या कर रही थी इसलिए दुर्योधन को वह स्वभाव मिला? वैसे गांधारी वैसे स्वभाव से नहीं थी, वो बहुत ही धर्मपरायण थी, स्वभाव से बहुत अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन ये एक छोटी सी चीज, एक दोष उनके में एक बार आ गई बस, ऐसा नहीं कि उनका स्वभाव ऐसे था। गांधारी ने बहुत बार दुर्योधन को बहुत डांटा कि दुर्योधन तुम इतने मूर्ख हो, तुमने व्रत लिया है क्या अपने सारे वंश का नाश करने के लिए? क्यों तुम समझते नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम उस समय समझोगे जब भीमसेन उनके उसके गदे से तुम्हारी मृत्यु करेगा, तुम्हारी हत्या करेगा युद्ध भूमि पर, तभी तुम समझोगे, उसके पहले नहीं समझोगे। तो गांधारी का ऐसा ईर्ष्यालु स्वभाव था नहीं, लेकिन एक बार ऐसे हो गया, क्योंकि ये महिला का स्वभाव ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। दुर्योधन ने प्रत्यक्ष रूप से उस जुआ के खेल में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि दुर्योधन छल कपट में बड़े निपुण थे, शकुनी को आगे किया, और वैसे भी शकुनी इस चीटिंग को जानते थे, कैसे ये जुआ खेलना, कैसे इसमें चीटिंग करना, इसमें बड़े निपुण थे, इसलिए उन्होंने शकुनी को आगे रखा। अशोक पांडवों के वंश की हत्या क्यों करनी थी? क्योंकि अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया था कि इन्होंने मेरे पिता की हत्या की, इस गुस्से की वजह से वो सब नष्ट करना चाहते थे पांडवों के लिए।
हरे कृष्ण प्रभु,
पहला प्रश्न ये है कि ऐसे शास्त्रों में बताया हुआ है कि पांच वर्ग हैं समाज में जिनकी रक्षा होनी चाहिए। एक हैं गाय, दूसरी हैं महिलाएं, तीसरे हैं बच्चे, चौथे हैं वृद्ध लोग, और पांचवे हैं ब्राह्मण। तो इन पांच वर्गों की रक्षा होनी चाहिए। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो वचनबद्ध थे, वो जुए में हार गए थे, सबके सामने उन्होंने वचन दिया था कि ठीक है, मैं ये जुआ कहीं अगर मैं हार गया तो मैं मेरा सब कुछ मैं आपको दूंगा। वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा प्रश्न कि क्या था दूसरा प्रश्न? क्योंकि कुरु वास्तव में सभी कौरव हैं, एक दृष्टि से देखा जाए पांडव भी कौरव हैं और कौरव भी कौरव हैं। कौरव मतलब कुरु के वंश में आने वाले, कुरु महाराज उनके पूर्वज थे, लेकिन इन दोनों में भेद करने के लिए उनको पांडु के पुत्र पांडव कहते हैं, इनको कौरव कहते हैं। वैसे दोनों पांडव और कौरव वास्तव में कौरव हैं, क्योंकि कुरु के वंश के हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में भेद करने के लिए ऐसे कहा गया है। भक्त समाज में जब वरिष्ठ या कनिष्ठ वैष्णवों की बात आती है तो वह किस आधार पर होनी चाहिए और एक दूसरे के में संबंध कैसे होने चाहिए? वैष्णव वरिष्ठ है या कनिष्ठ है, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हम कितने साल रहे हैं भक्ति में। हाँ, ये भी एक है लक्षण, जो हमसे पहले आए हैं, जो कई सालों से हैं भक्ति में, उनका सम्मान हमें अवश्य वरिष्ठ कह के करना चाहिए। परंतु वरिष्ठ होने का सच्चा मतलब है कि हमारे अंदर वैसे ही वैष्णव गुण प्रकट होने चाहिए। हमें केवल वरिष्ठ से लेना देना कुछ नहीं है, जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं उनका संग हमें करना है। तो वरिष्ठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उन्नत भक्त है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कम समय के बाद ही ज्यादा प्रगति कर चुका हो भक्ति में, हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद भी कोई व्यक्ति ज्यादा प्रगति नहीं कर चुका है भक्ति में, हो सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति में प्रगति ज्यादा नहीं कर चुका है क्योंकि वो ज्यादा समय तक रहा है, फिर भी हम उसको सम्मान करते हैं। लेकिन संग ज्यादा करना चाहिए उन लोगों का जो उन्नत है भक्ति में, जो प्रगति कर चुके हैं। केवल वरिष्ठ भक्त नहीं, हमें एडवांस्ड भक्त चाहिए, प्रगतिशील भक्त चाहिए संग करने के लिए।